ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
अध्याय दो, महाराणा प्रताप का जन्म। विधाता की उल्टी गति के कारण राणा सांगा के उदय सिंह ऐसे पुत्र हुए जो मेवाड़ के राज सिंहासन के योग्य नहीं थे, और उदय सिंह के प्रताप सिंह जैसे पुत्र हुए जिनको आज भी मेवाड़ का ध्रुव तारा कहा जाता है। तभी तो कहना पड़ता है कि विधि के विधान को कौन रोक सकता है, उसकी गति प्रबल होती है। महाराणा प्रताप सिंह कहा करते थे कि यदि मेरे और दादा राणा सांगा के बीच में कोई और नहीं होता तो मेवाड़ की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं होती। मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग पर कभी विदेशियों का झंडा नहीं फहराता। उदय सिंह 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे। जिन राजपूत सरदारों ने कमल मीर में उदय सिंह के माथे पर राज टीका किया था उनमें झालौर के सरदार शोणी गुरु प्रमुख थे। शोणी गुरु का वंश हमेशा से अपने वीर व्रत का पालन करने के लिए विख्यात था। उन्होंने उदय सिंह के साथ अपनी लड़की का विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। जब सरदारों ने उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और उस प्रस्ताव के अनुसार शुभ मुहूर्त में शोणी गुरु की पुत्री के साथ कमल मीर में उदय सिंह का विवाह हुआ, तो विवाह के कई वर्ष बाद उस शोणी वंशीय मही पुत्री के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय ये कौन जानता था कि एक दिन यह पुत्र महाराणा प्रताप सिंह के नाम से मेवाड़ और राजपूत जाति का ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष का चेहरा उज्जवल करेगा। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के समान बालक प्रताप की चमक और शक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। वैसे तो महाराणा उदय सिंह के 24 लड़के थे, परंतु प्रताप और उनसे छोटे भाई शक्त सिंह साथ साथ ही खेलते कूदते थे। दोनों भाइयों में आपस में लड़कपन में ही विरोध भाव होने लगा। बात बात में शत्रुता का भाव बढ़ने लगा, जिसका बहुत भयानक परिणाम हुआ। इसी आपस में शत्रुता ने आगे चलकर मेवाड़ की स्वाधीनता को नष्ट करना चाहा था। बालक प्रताप और शक्त तलवार से ही खेलते थे। एक दिन एक तलवार नई बनकर आई थी। प्रताप और शक्त के पिता एक मोटी रस्सी मंगाकर उसकी धार की परीक्षा करने के लिए कह रहे थे, परंतु 5 वर्ष के बालक शक्त सिंह से नहीं देखा गया कि मोटी रस्सी पर तलवार की धार की जांच की जाए। बालक शक्त सोचने लगे कि जो तलवार युद्ध क्षेत्र में अनगिनत मनुष्यों के सिर धड़ से अलग करने के लिए मंगाई गई है, क्या उसकी जांच कच्चे सूत के धागे पर की जाएगी। दिल में यह विचार उठते ही बालक शक्त सिंह ने उस तलवार का अपनी उंगली पर आघात किया। तलवार के आघात के कारण बालक शक्त सिंह की उंगली में से खून का फव्वारा छूटने लगा, परंतु बालक के चेहरे पर नाम मात्र के भी दुख के लक्षण नहीं दिखाई दिए। वह खुशी से भरी आंखों से खून की धार देखने लगा। उनकी आंखों में से आंसू की एक बूंद भी नहीं टपकी। पास में खड़े हुए सारे लोग चकित और स्तंभित होकर बालक के चेहरे की ओर देखने लगे। महाराणा उदय सिंह को बालक शक्त सिंह के इस साहस पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में आज्ञा दी कि इस कुल कलंक बालक का सिर अभी धड़ से अलग कर दिया जाए, परंतु पास में खड़े हुए सरदारों ने जैसे तैसे समझा बुझाकर महाराणा उदय सिंह का गुस्सा शांत किया। उदय सिंह की भविष्यवाणी सच हुई। प्रताप सिंह जैसे मेवाड़ के नहीं बल्कि भारत के चेहरे को उज्जवल करने वाले हुए, वैसे ही शक्त सिंह मेवाड़ के कुल कलंक, देशद्रोही और जाति द्रोही हुए। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शक्त सिंह की जनपत्री से यह पता चलता था कि वह मेवाड़ के लिए कलंक साबित होंगे। इसी कारण उदय सिंह उनसे विरक्त रहते थे। इस कारण उन्होंने शक्त सिंह का सिर काटने की उस समय आज्ञा दी थी। जिस समय प्रताप और शक्त सिंह दोनों राजकुमार इस तरह से आमोद प्रमोद में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय वापर रावल की गद्दी पर राणा उदय सिंह जी विराजमान थे। परंतु उदय सिंह जी में मेवाड़ के राणा होने लायक कोई गुण नहीं था। वे वीर धर्म को भूलकर विलासिता में फंसे हुए थे और एक वैश्या के प्रेम में फंसकर अपनी वंश परंपरा की मर्यादा को खत्म कर चुके थे। उनको अपने राज्य की जरा से भी सुध-बुध नहीं रही थी। इतिहास से यह पता चलता है कि राणा सांगा की मृत्यु के थोड़े दिन बाद ही उनके प्रतिद्वंदी बाबर की भी मृत्यु हो गई थी। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को शेर शाह के कारण अपने राज्य तक से हाथ धोना पड़ा था। बड़े बड़े संकटों का सामना करके हुमायूं ने अपना खोया हुआ राज्य पाया था। उस समय राणा सांगा के समान कोई चतुर वीर मेवाड़ की गद्दी पर होता तो सारे भारतवर्ष में अपना अखंड राज्य स्थापित कर लेता। परंतु मेवाड़ और सारा राजपुताना ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में उस समय ऐसा कोई दूरदर्शी मनुष्य नहीं बचा था और इसी कारण मुगलों की उन्नति का रास्ता साफ हो गया था। हुमायूं के बाद अकबर भी 12 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठा। यदि अकबर और उदय सिंह की आपसी तुलना की जाए तो बहुत सारी बातों में समानता मिलेगी। अकबर ने भी बचपन में उदय सिंह के समान अनेक संकटों का सामना किया था, अनेक कष्टों में फंसा था, परंतु संकट और मुसीबतों से उसका दिल मजबूत हो गया था। अकबर अपने पिता के राज्य को बढ़ाने वाले और उदय सिंह मेवाड़ को डुबाने वाले हुए। जिस समय मुसीबत का मारा हुमायूं मेवाड़ में पहुंचा और वहां आश्रय चाहा तो मेवाड़ के राजा मल्लदेव ने उनको आश्रय देना तो दूर उल्टा उसको गिरफ्तार करना चाहा था, क्योंकि मुगलों से एक युद्ध में मल्लदेव का सबसे बड़ा पुत्र राममल मारा गया था। मल्लदेव ने इस अवसर पर हुमायूं से बदला चुकाना चाहा था। हालांकि हुमायूं उस समय मल्लदेव के हाथ नहीं आया, परंतु साथ ही वह उस समय के अपने अपमान की बात बिल्कुल नहीं भूला। दूसरी बार राज्य प्राप्त करने के थोड़े दिनों बाद ही हुमायूं की मौत हो गई, इसीलिए वह खुद तो मल्लदेव से बदला नहीं ले सका, परंतु उसके बेटे अकबर ने बदला लेने की ठानी। अकबर की मां ने उसको मल्लदेव से बदला लेने के लिए और भी उत्साहित किया। अकबर अपने पिता का अपमान भूलने वाला नहीं था, इसीलिए वह अपनी सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ गया। उसने अजमेर में अपनी सेना का पड़ाव डाला। उसने सन 1562 में मोरता किले पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले जयपुर के महाराज बिहारी मल और उनके पुत्र भगवान दास ने अकबर की दासता स्वीकार करके पवित्र राजपूत कुल में कलंक लगाया। जयपुर नरेश बिहारी लाल ने अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर से कर दिया। इस तरह बिहारी लाल ने राजपूताने का गौरव मिट्टी में मिला दिया। आधीनता स्वीकार करने और लड़की देने के कारण बिहारी लाल के पुत्र भगवान दास और भगवान दास के दत्तक पुत्र मान सिंह ने अकबर के राज्य में उच्च पद प्राप्त किए। पहली बार राजधानी में उथल पुथल मचने से अकबर मेवाड़ को बिना हाथ में लिए ही लौट गया, परंतु वह चुप होने वाला नहीं था। धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाकर 5 वर्ष बाद उसने फिर से मेवाड़ पर चढ़ाई की। इस बार उसको सफलता भी प्राप्त हुई। जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों ने अकबर की आधीनता स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, जोधपुर के मल्लदेव के लड़के उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। मालवा के राजा ने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के यहाँ आश्रय लिया। इसीलिए अकबर की नजर चित्तौड़ पर पड़ी। चित्तौड़ एक प्राचीन नगर है जो छोटी सी बनास नदी के किनारे पहाड़ पर बसा हुआ है। इसके चारों ओर अभेद प्राचीर है। शहर की दीवार भी चारों ओर पहाड़ के समान दिखाई पड़ती है। प्रधान द्वार सुरमपोल या सूर्य तोरण है। इस तोरण की रक्षा का भार सालुम्भ्र दुर्ग के अधिपति चंद्रवत सरदार पर था। अकबर ने जब चित्तौड़ पर पहली बार आक्रमण किया था तब उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, क्योंकि बादशाह अकबर की उदय सिंह की प्रिय पत्नी के सामने दाल नहीं गल सकी। वह स्त्री क्षत्रिय वीरों को साथ लेकर बादशाह की छावनी तक ही नहीं किंतु बादशाह के तंबू तक आक्रमण करती हुई चली गई। राजपूतों की मार के सामने मुसलमान ठहर नहीं सके। राणा उदय सिंह ने इस जीत का यश पत्नी को ही देना चाहा, जिससे राजपूत सरदारों ने गुस्सा होकर उस स्त्री को ही मार डाला। उधर अकबर ने भी घर की अनबन से लाभ उठाने का उपाय सोचा। उसने राजपूतों के घर की अनबन सुनते ही चित्तौड़ पर सन 1568 में फिर से आक्रमण कर दिया। इस बार अकबर अपने साथ बहुत सारी फौज लेकर आया था और उसने चित्तौड़ को घेर लिया। अकबर की सेना इतनी थी कि 10 मील तक उसकी छावनी पड़ी हुई थी। राणा उदय सिंह ने इस समय बहुत कायरता दिखाई। वह चित्तौड़गढ़ छोड़कर भाग गया, परंतु राजपूत वीर कायर नहीं थे। चित्तौड़ के गौरव में प्रत्येक राजपूत अपना गौरव समझता था। चित्तौड़ का अपमान होना प्रत्येक राजपूत अपना अपमान समझता था। इसीलिए महाराणा के भाग जाने पर अनेक राजपूत एक लिंगेश्वर की जय, बाप्पा रावल की जय आदि आकाश गुंजाने वाली आवाज करते हुए चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए एकत्रित हुए। अनगिनत राजपूत वीर सूर्य तोरण की रक्षा के लिए आगे आए। बदनौर के जयमल राठौर और केलना के पत्ता जी, जिन्हें पुत्त या पत्तू भी कहते हैं, सूर्य तोरण की रक्षा के लिए आगे आए। जयमल राठौर मेड़ता के राव थे, परंतु घरेलू झगड़े के कारण उदय सिंह उनको उदयपुर ले आए थे। जयमल और पत्ता का नाम आज भी राजस्थान के बच्चे बूढ़े आदर के साथ लेते हैं। वास्तव में इस युद्ध में मेवाड़ के वीरों ने अपनी स्वाधीनता और चित्तौड़ के किले के गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। इस युद्ध में वहां की सुकोमल अबलाओं ने भी अपने अपूर्व साहस से बादशाह अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे। जब सूर्य तोरण के पास सलोवर के राव मारे गए, तब राजपूत सेना की सरदारी केलवा के पत्ता जी को सौंप दी गई। पत्ता जी की उम्र केवल 16 वर्ष की थी। उनके पिता इससे पहले एक युद्ध में मारे गए थे। वह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, परंतु जब उनको सेना का भार सौंपा गया था, तब उनकी मां जरा सी भी विचलित नहीं हुई। भारतवर्ष का वह समय ऐसा ही था कि जब राजपूत मां अपने पुत्र को लड़ाई में जाने के लिए विदा करते समय उत्साह से भरी बातें कहती थीं कि जाओ जाओ बेटा जाओ, जिंदा रहोगे तो स्वाधीनता भोगोगे और मर गए तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। पत्ता जी की मां भी उन राजपूत रमणियों में से थीं, जो अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहती थीं। वह वीर बाला अपनी पुत्री और पत्ता जी की पत्नी को साथ लेकर खुद बादशाह अकबर के मुकाबले के लिए युद्ध स्थल में गईं। जिस समय बादशाही सेना चित्तौड़ के पास पहुंचने लगी, उस समय इन तीनों अबलाओं ने अपने अचूक निशानों से मुगल सेना के धुर्रे उड़ा दिए थे। बादशाह अकबर उक्त तीनों वीरांगनाओं की बहादुरी पर इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने आज्ञा दी थी कि जो कोई भी इन तीनों वीरांगनाओं को पकड़ कर लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। परंतु एक एक करके तीनों वीरांगनाएं रमणियां मारी गईं। तीनों वीरांगनाओं की वीरता देखकर चित्तौड़ के वीर और भी दुगने उत्साह से शत्रुओं का मुकाबला करने लगे। अनगिनत शत्रुओं के सामने मुट्ठी भर राजपूत कब तक लड़ सकते थे? पत्ता जी ने अपने साहस और पराक्रम से मुसलमानी सेना के बड़े बड़े वीरों के दिल कंपा दिए थे। जिस तरह प्रचंड आंधी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर रुक जाती है, उसी तरह से महावीर पत्ता जी भी अपनी तलवार से मुगल सेना के अनेक बहादुरों के सिर गाजर मूली की तरह काटकर अंत में मारे गए। परंतु राजपूत वीरों ने हिम्मत नहीं हारी। जयमल राठौर ने किले की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। इस भीषण संग्राम में महाराजा प्रताप सिंह ने जयमल राठौर की अधीनता में अपूर्व साहस और वीरता से युद्ध किया था, जिससे राजपूत उनके पिता का निंदित व्यवहार भूल गए। वीर जयमल ने भी अपनी वीरता दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और अपने जिंदा रहते चित्तौड़ का किला दुश्मन के हाथ में नहीं लगने दिया। एक दिन रात को जयमल मशाल के उजाले में किले के बुर्जों की मरम्मत करा रहे थे, तभी अकबर ने जो किला घिरा हुआ था उन्हें पहचान कर ऐसा निशाना मारा कि जयमल उसी जगह पर गिर गए। दूरदर्शी जयमल ने जब देखा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, अब चित्तौड़ भी दुश्मनों के हाथ से बच नहीं सकता, तब उन्होंने बचे हुए अपने 8,000 योद्धाओं को केसरिया बाना पहनाने और दरवाजा खोलने की आज्ञा दी। आज्ञा देते ही किले का दरवाजा खुल गया और राजपूत गण बादशाही सेना पर टूट पड़े और लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए। 9 रानियां, 5 राजकुमारियां, 2 छोटे राजकुमार और बहुत से सरदारों की पत्नियां उस समय जब राजपूत लोग केसरिया बाना पहन किले का फाटक खोलकर बाहर निकले थे, आग में जलकर भस्म हो गईं। चित्तौड़गढ़ में यह तीसरा शाका हुआ। यह युद्ध कितना भयानक हुआ होगा, उसका केवल कर्नल टार्ट के कथन से ही पता लग सकता है कि जब मरे हुए वीरों के यज्ञोपवित तोले गए, तो उनका वजन 74.5 मन हुआ। किसी किसी का अनुमान है कि उस समय मन 4 किलो का होता था। इसका मतलब 25,000 से अधिक आदमी इस युद्ध में मारे गए। अंततः अकबर की इच्छा पूरी हुई, चित्तौड़गढ़ उसके हाथ में आ गया। जिस समय चित्तौड़गढ़ अकबर के हाथ में आया, वह मनुष्य से शून्य हो गया था और अश्मशान बना हुआ था। अकबर ने चित्तौड़ पर जीत प्राप्त करके अपने पत्थर दिल और नृशंस स्वभाव का परिचय दिया। उसने चित्तौड़ पर बड़े बड़े अत्याचार किए। नराधम पापी अलाउद्दीन खिलजी और मालवा के बादशाह बहादुर के हाथ से भी जो राजकीय चिन्ह बच गए थे, उन सबको अकबर ने नष्ट कर दिया। देवालय और मंदिरों के कलश और शिखर यवनों के पैरों तले रौंदे गए। चित्तौड़ के सुंदर भवन और पवित्र मंदिर गिराकर जमीन में मिला दिए गए। जिन नगाड़ों की आवाज कोसों दूर तक पहुंचकर गहलोर नरेशों की महिमा प्रकट करती थी, जिनकी आवाज से मेवाड़ के दुश्मनों का कलेजा कांपता था, जो बहुमूल्य दीप वृक्ष अपने प्रकाश से भगवती चतुर्भुजा के मंदिर की शोभा बढ़ाते थे, जो चित्तौड़ के बड़े बड़े दरवाजों के किवाड़ चमक दमक रहे थे, उन सबको अकबर अपने नए नगर अकबराबाद को सजाने के लिए ले गया था। उसने दिल्ली में अपने राजमहल के सामने जयमल और पत्ता जी की हाथी पर चढ़ी हुई पत्थर की 2 मूर्तियां बनाकर रखी थीं। सच्चे शूरवीर के सामने उनके शत्रुओं को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। अब उदय सिंह के बारे में जानते हैं। जब अकबर चित्तौड़गढ़ को घेरे हुए था, दोनों ओर से रणचंडी का मधुर नाच हो रहा था, तब उदय सिंह ने देखा कि अभी युद्ध की समाप्ति नहीं हुई है और पता नहीं अभी कितने दिन और युद्ध हो। यह सोचकर उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। पहले उन्होंने राजाधिपाल नाम के स्थान से गोहलों के यहां आश्रय लिया, फिर और भी दक्षिण अरावली पर्वत श्रेणी के बीच की तरफ। वहां उन्होंने कई साल पहले एक सरोवर और सुंदर भवन बनवाया था। उस सरोवर का नाम था उदय सागर और उस महल का नाम था नचौकी। क्योंकि इस जगह जाकर उदय सिंह ने आश्रय लिया था, इसीलिए वह स्थान सारे मेवाड़ की राजधानी हुई और बाद में उसका नाम उदयपुर पड़ा। उपरोक्त घटना अर्थात चित्तौड़ पतन के बाद उदय सिंह 4 साल तक और जिंदा रहे। चित्तौड़ में उनका राजत्व, राज सम्मान और राज वैभव था, परंतु यह सब कुछ होने पर भी राज गौरव नहीं था। वीर केसरी प्रताप सिंह उदयपुर में ना रहकर कमल मीर में रहना पसंद करते थे। उदय सिंह का प्रताप सिंह से स्नेह भी नहीं था। इतिहास से पता चलता है कि जिन राजकुमारों को उनके पिता राजाओं ने स्नेह की नजर से नहीं देखा, उन्हें सारे संसार ने आदर और स्नेह की नजर से अपनाया। यही हालत महाराणा प्रताप सिंह की भी हुई, जो अपने पिता के स्नेह के पात्र नहीं थे। वे अपनी अलौकिक वीरता से आज भी सारे मेवाड़ के ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के पूजनीय हो गए।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।